ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے لینے کے کچھ اللہ پاک نے اسباب بنائے ہیں، ان کو موجبات کہتے ہیں. تو موجبات رحمت، اللہم انی اسألک موجبات رحمتی، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت کے موجبات مانگتا ہوں. ارے براہ راست رحمت مانگتا ہوں نہیں بول رہے، وہ بھی ہے، ویسا بھی سکھایا ہے، یہ دعا کرو کہ اللہ آپ سے ہم آپ کی رحمت مانگتے ہیں، یہ بھی سکھایا کہ رحمت کی موجبات مانگتے ہیں، رحمت کو واجب کرنے والی چیز، رحمت کا سبب بننے والی چیزیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے میں کچھ چیزیں سبب اور مسبب، شرط اور مشروط کے ساتھ طرح جوڑی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں ان کے کاموں میں، تو اسماء مشروطی میں ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کی خصوصیات ہیں، کیونکہ اسماء مشروطی ہیں، اسماء اضافی ہیں. اللہ کی صفات بہت سی قسموں کے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو سبب ملے گا تو مسبب ملے گا، موجب ملے گا تو موجب ملے گا. موجب کہتے ہیں واجب کرنے والا، موجب جو واجب ہوا. تو صبر جو ہے یہ موجبات میں سے ہے، خاص آدمی کو برداشت ملنا، اور یہ ایسا بڑا موجب ہے یہ کہ جس کو یہ مل جاتا ہے اس کو دین مل جاتا ہے. اتنا بڑا موجب ہے، کیونکہ دین کا موجب صبر ہے. اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو صبر کا مہینہ فرمایا، اور وہ شہر الصبر و صبر ثواب الجنہ. اور یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر سیکھنا ہوتا ہے، برداشت کرنا، جھیلنا، روکنا اپنے کو، صبر میں روکنا ہوتا ہے. اب کھانے سے روک دیا اپنے کو، پینے سے روک دیا اپنے کو، جائز تعلقات سے روک دیا اپنے کو. یہ روکنا بڑا عجیب وصف ہے انسان کے پاس، روکنا ہی آنے کا ہے اصل. نیکی کما کے بھی روکنا سیکھنا پڑتا ہے. اپنے پاس سفر لوں گا، نیکی کماتے بہت ہیں لیکن روک نہیں پاتے. ایک صاحب کہنے لگے، یہاں پہ دین پہ چلنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ میں بولا، یہاں کے گھڑوں میں سوراخ ہے، جمع بہت ہوتا، نیچے سوراخ ہونے سے پورا نکل جاتا. یہاں کے گھڑوں سے بولا تھا، اپنے گھڑے یہاں جو اپنا وصف ہے، اپنی جو صفت بن جاتی ہے یہاں پر، وہ ایسے گھڑے کی ہو جاتی ہے جس میں سراغ ہے، رکتا ہی نہیں کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو جو صبر کا مہینہ فرمایا ہے، یہ ایک بہت لمبی دنیا ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت پھیلا ہوا ہے، اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، کئی چیزوں پر اثر پڑتا ہے اس کا. صبر عن العمل، صبر على العمل، صبر فی العمل، یہ تین درجے ہوتے ہیں. काम नहीं करके अपने को सबर में रखना, काम करते हुए अपने को सबर में रखना, काम के बीच में ही अपने को सबर में रखना। लेकिन सब्र अनिल अमल, सब्र अलल अमल, सब्र फिल अमल। नमाज में दिमाग को इधर उधर जाने नहीं देना, ये सब्र फिल अमल है। इधर उधर जाना चाहता है उसको रोकने का है, सब्र ही तो है वो। दिल जो है ना इधर उधर भागना चाहता है, हमेशा परेशान रहता है। परेशान दो लफ्ज हैं, ये परीदन से है और शान से है। परीदन माने उड़ना और शान माने हालत, इसकी हालत उड़ती रहती है। इमाम साहब को काम पे लगा देते हैं, आप शुरू करो अपन चले जाते, कोई इफ्तारी खरीदने जा रहा है, घर वालों के पास जा रहा है, बच्चों को टहला रहा है, उसको ऐसा आइडिया है नफ तबीयत को नफ्स को कि उन्हें पूरे काम करके फारिग हुए थे कि तेरे इमाम का अस्सलाम वालेकुम भी आ जाता। रोकना अमल में, अपने आप को रोकना, ये सीखने की चीज़ें बहुत ही बहुत मुश्किल होता है, मगर सीखे तो सब है। हजमा यूसुफ और रहमतुल्लाह अलैह का एक महफूज एक ऐसे साहब से मैंने सुना था कि हजमा यूसुफ और रहमतुल्लाह अलैह से बराह रास्त इस्तिफादा करने वालों में से हैं। वो फरमाते कि हजरत फरमाते थे सुना कि ख्याल जो है वो अना का हिस्सा है, ख्याल जो है वो अना है, मई जो होता है ना मई, ख्याल उस मई का हिस्सा है। अगर आप नमाज में आपका ख्याल नमाज में नहीं है, इधर उधर चला गया तो मई नहीं है, आप ही नहीं थे वहाँ, बकिया सुख था, आप ही नहीं थे नमाज में, बकिया सुख था, अपना कोट रख के आप चले गए तो नमाज पढ़ते रहो। ये तो कोट ही है ना, बाहर का कवर ही है, सवारी हमारी मरकब राखी, वो हम अंदर हैं, ये हमारी सवारी है, सवारी को यहाँ रख के बोले मैं जा के आता हूँ। इसलिए हमारी नमाजों में जान नहीं है, वजह उसकी यही है कि हम रहते नहीं नमाज। और रहना जो है ना वो ये सीखना पड़ता है कि अल्लाह तबारक व तआला का ताल्लुक हमारे साथ कैसा है, मखलूक के साथ कैसा है। ये इल्म क़ुर्ब के सीखने से ये कैफियत, ये दौलत अल्लाह पाक अता फरमाते हैं रहने की। इल्म क़ुर्ब के सीखने का मतलब ये होता है कि मखलूक के साथ अल्लाह तबारक व तआला का ताल्लुक, खालिक का ताल्लुक कुछ ऐसा है कि जहाँ मखलूक है वहाँ खालिक है, जहाँ मखलूक है वहाँ खालिक है। खालिक के बगैर मखलूक रह नहीं सकती, कोई भी मखलूक रह नहीं सकती खालिक के बगैर। खल्क बोलते हैं उसको, खल्क का रब्ता ऐसा होता है, तो वो सीखना होता है। जानिमाज के साथ है आप तो जानिमाज के साथ में भी एक मईयत है अल्लाह पाक, आप खुद हैं आपके साथ में भी एक मईयत है, आपका हाथ है, आपका सर है अपना। जब तक अल्लाह पाक आपको सर नहीं दिए आप सजदा कहाँ से करते, उनका सर लेके ही सजदा करना पड़ता है, उनसे ही सर लेके सजदा करते हैं, उनका सर बोले तो उनसे लेके, उनकी छुए ना चीज़ वो तो उनका ही छुआ, फिर वो उनसे लेके आप करेंगे तो उनका ही, उनका सर उनकी मिल्कियत वाला सर, उनके सर से ही सजदा करना है, उनके पैर से, उनके हड्डियों से दिए हुए हड्डियों को ही सीधे में जो है ना ज़मीन पर रखना है, उनका हाथ लेके ही बांधना है। आदमी का पूरा वजूद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला से ही कायम रहता है, हर शे का वजूद अल्लाह ताला से ही कायम रहता है। खालिक अपने मखलूक को छोड़ के जाता नहीं कहीं, मखलूक खालिक से फारिग नहीं हो सकती कभी भी, कुछ ऐसा रब्त है इसमें। मरहूम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इत्तिसाल बेतकय्युफ बेगुमान, बग़ैर कैफियत के बयान किए वाला, बग़ैर गुमान किए वाला ताल्लुक़ है इत्तिसाल, माने जोड़। इत्तिसाल बेतकय्युफ बेगुमान, बग़ैर तकय्युफ़ का, बग़ैर गुमान का, यानी हमारा गुमान पकड़ नहीं सकता कि ये क्या नौयत से है ये, और कैफियत मुकर्रर नहीं कर सकते। हस्त रब्बुन्नास, इत्तिसाल बेतकय्युफ बेगुमान, हस्त रब्बुन्नास बाजान नास, यही है रब्बेनास जो है वो लोगों की जान के साथ ऐसा है। जहाँ मखलूक है वहाँ खालिक, मखलूक खालिक के बगैर रह नहीं, उसका गुजारा ही नहीं, तो वो सीखना होता है। जब वो सीख लेते हैं तो फिर अपने को ये समझना आसान हो जाता है, ये मश्क आसान हो जाती है। नमाज में रहे बंदा, नहीं रहे कहीं जाए नहीं। सिफत एहसान, सबर से ही सिफत एहसान है। हम ताबुद अल्लाह का अन्य की तरह, अल्लाह पाक की इबादत ऐसी करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत तो रोज़ा भी है। तो सिफत एहसान पूरे रोज़े में रहना है, लंबा काम। 5 मिनट के बाद तो बोल रहे थे तुम, अभी एकदम 12 घंटे पे चढ़ गए। कुरान पाक की तिलावत ये भी इबादत है, तो उसमें भी सिफत एहसान होना है। तस्बीहात ये भी इबादत है, उसमें भी सिफत एहसान चाहिए। कमाना जो है ना ये भी इबादत है, उसमें भी सिफत एहसान चाहिए। बीवी बच्चों को टाइम देना, बीवी बच्चों का शौहर को टाइम देना, ये भी इबादत है, इसमें भी सिफत एहसान चाहिए। बिजनेस, कारोबार, नौकरी, सब इबादत है। चूँकि हज़रत साहबा को सिफत एहसान हासिल थी, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुहुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। ये वो लोग हैं कि जिनको कारोबार, खरीद व फरोख ये अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं करती, ना अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल करती, ना नमाज के कायम करने से गाफिल करती। वो इक़ामिस सलाह, यखाफूना यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहि अल-क़ुलूब वल-अबसार, उस दिन से वो लोग डरते रहते हैं जिस दिन पलट जाएंगे दिल भी और आंखें भी, ज़ाहिर बात है दोनों उलट पलट हो जाएंगे, इतनी घबराहट वाला दिन होगा, आंखें भी और दिल भी। उसका डर, उसकी फिक्र, तो रोज़े में ये लाने की कोशिश करना है कि जब तक रोज़ा है उस वक़्त तक अल्लाह तबारक व तआला का ध्यान भी रहे, जैसे नमाज में अल्लाह तआला के ध्यान में रहना है कि अल्लाह मेरे को देख रहे हैं, मैं अल्लाह के सामने हूँ। अंताबुदल्लाह का अन्न का तरह, ऐसी इबादत करो जैसा कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फैलम तक उन तरह फैलना हूँ जरा का, इसलिए कि अगर से कि तुम नहीं देख रहे हो उनको, लेकिन वो तो तुमको देख रहे हैं, ये तो यकीनी है। और ये ध्यान पैदा करना, रोकना है अपने को, ये सब्र है, सब्र फिल अमल है, काम में सब्र से काम लेना, अमल करते हुए उसमें सब्र से काम लेना। कुरान पाक की तिलावत में सब्र, तस्बीह में सब्र, रोज़े में सब्र, नमाज में सब्र, और काम को पाबंदी से करना, ये सब्र अल अमल है। नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते ही रहना, जब भी नमाज का वक्त आए ना नमाज पढ़ना, रोज़ा रख रहे हैं रोज़े रोज़ा रख, हर साल जब रोज़ा रखने का वक्त आ गया तो रोज़ा रखना, ज़कात देने का वक्त आया ज़कात देना, हज का वक्त आया हज कर देना, ये सब्र अल अमल कहलाता है। नमाज पर कायम रहना, अकीमुस्सला, नमाज पर कायम रहो, नमाज को कायम रखो। नौकरी पे कायम रहते नहीं, वैसा ही आपकी नौकरी चल रही कायम है, नौकरी तो हो कायम है, ये खुद करके जाके करके आए थे तो नौकरी कायम थोड़ी है। कायम रहने का मफहूम तो उस पर बोला जाता है जब आदमी जो है ना मुस्तकिल कंटिन्यू कर रहा हो। अल्लाह ताला ने नमाज को कायम रखने का जो हुक्म फरमाया है उसमें जहाँ और बातें हैं वहाँ तसलसल भी है, मुदावमत भी है। और एक सबर अनिल अमल है, काम नहीं करके अपने को रोकना, काम से रुकना, ये तीन किस्म का होता है सबर। सबर फिल अमल, सबर अल अमल, सबर अनिल अमल। अन जो है ना बचाने के लिए होता है, हटने के लिए होता है। उमन यरगब अन मिल्लत इब्राहिम इल्ला मन सफिया नफ्सह। सब्र अनिल अमल में जो है वो तमाम मनहियात जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है उनसे अपने को रोके रखना, मनहियात से रोकना। अच्छे काम करने का नाम ज़्यादा नेकी करना नहीं है, खराब नहीं करने वाले काम को नहीं करना, ये ज़्यादा नेकी करना है। जो काम नहीं करने के हैं उनसे बाज रहना, ये असल नेकी है। मारूफात और मुनकरात दो है ना इस्लाम में, कुछ चीज़ें करने की हैं वो मारूफात कहलाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं करने की हैं वो मुनकरात कहलाती हैं। तो मारूफात ज़्यादा करने से आदमी ज़्यादा दीनदार नहीं होता, मुनकरात नहीं करने से दीनदार होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी ने पूछा कि मन आबदुन्नास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे बड़ा आबिद कौन है। तो जो तस्बीह ज़्यादा पढ़े, जो तिलावत ज़्यादा करे, जो रोज़े ज़्यादा रखे, जो नफिलें ज़्यादा पढ़े, ये आपने जवाब नहीं दिया। हमारे जहन में तो यही आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इत्तकिल महारिम तकुन आबदुन्नास, हराम से बचो सबसे बड़े आबिद बनते, आराम से बचो सबसे बड़े आबिद बनते। एक दर्जी को आपने शेरवानी सीने को दिया, उसने आस्तीन भी सी, उसने अगला भी सिया, पिछला भी सिया, पट्टे भी बनाए, ये भी बनाए, वो भी बनाए। एक जगह से थोड़ा सा कतर दिया, काट दिया आस्तीन, बगल में से काट दिया, बाजू में से काट दिया। तो वो ये नहीं जता सकता आपके सामने के साथ मेहनत करके, घंटों मेहनत करके, ये भी करा, ये भी करा, ये भी करा, ये भी करा, आप उससे वो पूछते नहीं। आप तो उससे पूछते कि तू मेरे शेरवानी का सत्यानाश कर दिया यहाँ सुराख करके, याद ये तेरे मुंह पे वापिस, पैसे भी नहीं मिलेंगे तेरे को और कपड़े के पैसे मेरे को दे रहे, ये है वो। बहुत काम करने से काम नहीं चलता, नाफरमान कौन कहलाता है। ये नहीं कि जो हमेशा हर बात में नाफरमान नहीं करा है, बहुत सी चीज़ें मानता गया, एक बात नहीं मान रहा, बहुत नाफरमान हो गया, नाफरमान है पुटा हो, हालांकि बहुत सी चीज़ें मानता है बेचारा। ताल्लुक बनाए रखने के वास्ते बिगाड़ने वाला काम नहीं करने का रहता है असल में, ताल्लुक बनाए रखने के वास्ते ताल्लुक बनाने के बहुत से काम करने की जरूरत नहीं, बिगाड़ने का काम नहीं करने का रहता। एक बात बिगाड़ के बोल दी है उससे दोस्ती खत्म हो जाती, अख्तार शानू के पास भी यही उसूल है। तो जो चीज़ें नाजायज़ हैं उनसे अपने को रोकना, ये सब्र अनिल अमल कहलाता है। रोज़ा सब्र सीखने की चीज़ है, और जिसने सब्र सीख लिया उसको तक़वा मिल जाता, जिसको तक़वा मिल जाता उसको दीन पर अमल हो जाता, दीन पर अमल मिलने की इस्तेदाद उसके पास आ गई। कुतिबा अलैकुम अस्सियाम कमा कुतिबा अललज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, रोज़ा रखो तक़वा आ जाएगा तो जो कुरान दिया गया है उस पर अमल करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। रोज़ा अपनी ज़ात में भी एक इबादत है, और रोज़ा पूरे दीन पर अमल करने का एक जौहर है, कुव्वत है जो दी जा रही है, ट्रेनिंग है ये। चूँकि इस महीने में कुरान दिया गया है तो उस कुरान पाक पर अमल करने की ट्रेनिंग भी देना है, कुरान दिया गया है तो कुरान पाक पर अमल करने की ट्रेनिंग चाहिए। और ट्रेनिंग के बुनियाद क्या है, इसको सब्र करने आना। क्योंकि जो भी काम अल्लाह का मुतवज्जे होगा, माल की लेन से, जान की लेन से, अखलाक की लेन से, मामलात की लेन से, माशरत की लेन से, इबादतों की लेन से, वो सब्र चाहेगा। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना सब्र चाहता है, वक्त पे जाप पे जाना सब्र चाहता है, जाप पे पूरे काम में यकसुई से लगे रहना सब्र चाहता है। जाप की दीनदारी आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल है, वो भी नफिल नमाज भी नहीं पढ़ सकते जाप पे, नफिल मना है जाप पे, उसकी जाप में हरज होगा। कि जाप इस टाइप का हो कि हरज ना होता हो तो अलग बात है, उन्हें काम को छोड़ के कोई वास्तव नहीं देख रहे ना, उन्हें तो हिंदू है ना, उन्हें तो यहूदी है ना, मैं नमाज़ पढ़ लेता, रमज़ान है ना, कुरान शरीफ की तिलावत कर लेता, जी नहीं, जाप खराब होता उससे, और जाप खराब हुआ तो दिन खराब होता, जाप खराब हुआ तो दिन भी खराब होता। दिन बहुत ही नाजुक चीज़ है, नफीस कांच की चीज़ जो बनी हुई होती ना, जो ज़रा से उसे चटक जाती, वैसी चीज़ें दीन बहुत सेंसिटिव। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, वह शहर सबर। देखो ये महीना सबर का आ रहा है, सबर सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, मुंह बंद रखना सीखो, असर की नमाज से मस्जिद में जो बूढ़े आ जाते हैं ना मस्जिद में, तो एक दूसरे को यही बोल रहे थे, अरे रोज़ा उसके मुंह को मत लगो, नहीं रोज़ा है, क्योंकि बेसब्री में मुंह नहीं बंद होता। औरतों का मुंह बंद नहीं होता, औरतों का मुंह बंद हो गया तो आधा दिन आधा मसला लड़ाई झगड़े का तय हो जाता, सारा मसला मुंह खुले रखने का है। एक आमिल साहब के पास एक औरत जाके शिकायत करी शोहर से लड़ाई के लिए, तो उन्होंने बोले मैं एक ज़बरदस्त पानी जो है ना आपको पढ़ के देता हूँ, बहुत बहुत ही मुआसर है, बहुत तजर्बे वाला अमल करके दे रहा हूँ बोले। तो जैसे जो है ना मियाँ तुम्हारे घर में दाखिल होते ये दुआ का पानी शीशी में से निकाल के मुंह में पकड़ लेना, बस निगलना नहीं बोले, देखो करामत क्या होती है। जैसे शोहर घर में दाखिल हुआ मुंह में पानी पकड़ लिया हो गया, अब उन्हें बोला भी क्या है क्या नहीं, इशारा कर दी मुंह में पानी है दुआ का, उन्हें भी खामोश हो गया। उसके बाद उन्हें अपने काम में, इन्हें अपने काम में। थोड़े दिन के बाद में जो है ना मिठाई का डब्बा लेके आमिर साहब के पास, अरे भाई हमारे घर में तो सब झगड़े उगड़े सब खत्म हो गए, मोहब्बत पैदा हो। तो आमिर साहब के जो है ना दोस्त बाजू बैठे हुए थे, उन्होंने पूछे भाई क्या तो भी दिया इसको, बोले कुछ भी नहीं दिया, बोले उसका मुंह बंद करने के वास्ते पानी मुंह में पकड़ा दिया, बोले और कुछ भी नहीं। मुंह जो है ना दो बहुत रहते, एक मुंह फिजिकल मुंह है जो मुंह पे मुंह है, और एक बुराइयां करने के मुंह रहते वो बंद रखने का है। आंखों का एक मुंह है अपने स्मार्टफोन, उसमें से जाते अपन, उसका मुंह खोले कि आप समझो मुंह गड़बड़ हो जाती। कानों का बहुत सी चीज़ें रहती, बातिनी मुंह अलग होते, दिल के मुंह अलग होते हैं, दिल का मुंह अलग होता है। दिल का मुंह अल्लाह ताला की तरफ कर लेना, इन्नी वज्जा तो वजही, मैंने अपना मुंह अल्लाह की तरफ किया, तो मुंह से मुराद यहाँ पे दिल का ही मुंह है, ज़ाहिरी मुंह थोड़ी है मुराद, कल्बी रुख मुराद है, दिल के अंदर जो चाहते हैं, जो मोहब्बत, जो याद, जो फिक्र, जो रगबत, जो ख्वाहिश, जो जज्बात आते हैं, उन सब को मुंह अल्लाह की तरफ मैंने कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये बोल रहे हैं, इन्नी वज्जा तो वजही अल्लज़ी फ़तर अस्समावात والارض حنيفة وما انا من المشركين, اور اپنا منہ اللہ کی طرف کرنے میں میں مشرک نہیں ہوں۔ ایک مطلب یہ بھی ہے آیت کا کہ اس میں کسی کو شریک ہونے ہی نہیں دیتا میں, میری محبتوں میں, میری فدائیت میں, میری یاد میں, ذکر کرنے میں, فکر کرنے میں, میں کسی کو آنے نہیں دیتا اپنے دل میں۔ وما انا من المشرکین کا ایک اعتبار ہے, ایک تفسیر ہوتی ہے, ایک اعتبار ہوتا ہے, یہ اعتبار ہے۔ اور تفسیر میں یہ ہے کہ جو مشرکین ابراہیم اسلام کے زمانے کے جو شرک کرتے تھے اس کا انکار مراد ہے, اور اعتبار یہ ہے کہ اپنے دل کی توجہات کو بھی وہ بند کر کے بتا رہے کہ میرا منہ, میرا دل کا منہ کسی طرف آئی نہیں, صرف اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے عوام کا الگ ہوتا, خواص کا الگ ہوتا, اخص الخواص کا الگ ہوتا ہے۔ روزہ ایک عوام کا ہوتا ہے, ایک خواص کا ہوتا ہے, ایک اخص الخواص کا ہوتا ہے, خواص میں خواص کا۔ عوام کا روزہ کھانے پینے سے, میاں بیوی کے آپس کے تعلقات سے رکنا عوام کا روزہ۔ خواص کا روزہ اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے رکنا۔ جو آدمی روزہ بھی ہے جھوٹ بھی بول رہا, جو آدمی روزہ بھی ہے غیبت بھی کر رہا, جو آدمی روزہ بھی ہے خیانت بھی کر رہا آنکھوں کی, ظاہر ہے کہ اس کا روزہ رکھنا جو ہے نا اس کی روح ختم کر دے رہا ہوں, سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا بہت سے روزے داروں کو۔ بہت سے روزے داروں کو ان کے روزے میں صرف بھوک پیاس ملتی ہے, بھوکے رہے, نہ کھانا ملا نہ پانی ملا, بس اللہ کے پاس کچھ نہیں۔ تو خواص کے روزے میں یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے رکنا۔ اخص الخواص کے روزے میں یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے اور گناہوں کے ساتھ ساتھ غفلت سے رکنا, ما سوى اللہ کے اندر قلب کے مشغول ہونے سے۔ وعلیکم السلام, کرسی لے کے ادھر بلا لیتے ہیں۔ صوفہ بھی ہے نا, مشین آنے کا مطلب ادھر بھی ہے جگہ اگر کسی کو ضرورت ہو۔ پھر یہ یاد کرنے میں بھی درجے بہت ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہنا, غفلت میں نہیں جانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ماسوا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہونا, ماسوا اللہ ہمیں توجہ نہیں ہونا۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کا ماسوا کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس صورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ماسوا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کے پاس صورت نہیں ہے, اللہ صورت سے سبحان ہے, کیونکہ صورت ہونا اللہ کے لیے عیب ہے, کیونکہ صورت ہونا حادث ہونے کی علامت ہوتی ہے, صورت ہونا محدود ہونے کی, لمیٹڈ ہونے کی علامت ہوتی ہے, صورت ہونا فانی ہونے کی علامت ہوتی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے صورت نہیں ہوتی, ہستی کی کوئی شکل نہیں, یاد رکھ بولا, ہستی کو صورت نہیں ہوتی۔ تو جو صورت والی شے ہے وہ ماسوا اللہ ہے, آسمان بھی ماسوا اللہ, زمین بھی ماسوا اللہ, سورج اور چاند بھی ماسوا اللہ, دریا پہاڑ بھی ماسوا اللہ, درخت بھی, زمین بھی, مکان بھی, دکان بھی, खुद भी, दोस्त अहबाब भी, फर्नीचर भी, जिस पर नज़र पड़े वहाँ से वल्ला है। एक बात बारीक बोल देता हूँ तसव्वुफ की दिमाग में रहने के वास्ते, जिसके पास सूरत है वो वहाँ से वल्ला है ना। ख़ास बात यह है कि जिसके पास सूरत है उसके पास वजूद नहीं है, जिसके पास वजूद है उसके पास में सूरत नहीं है, जिसके पास में सूरत है उसके पास वजूद नहीं है। इसलिए हर सूरत अल्लाह से वजूद लेके मौजूद होती है, इसलिए अल्लाह के बगैर सूरत कायम नहीं रह सकती। वजूद कमालात में से, कमाल सूरत के पास नहीं है, सूरत मआइब में से, इसलिए वजूद वाले के पास सूरत नहीं है। अब ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। ये है मतलब जो इमाम माना रूम ने फरमाना इत्तिसाल बेगुमा, एक ऐसा इत्तिसाल है खालिक और मखलूक के दरमियान, एक ऐसा जोड़ है कि इसके न कैफियत बयान कर सकते हैं न गुमान कर सकते। हस्त रबुन्नास बा जान नास, रबनास जो है वो लोगों की जान के साथ ऐसा है। इसलिए जो सूरत है वो अल्लाह नहीं है, लेकिन सूरत के पास जो कुछ है वो अल्लाह का है। जो सूरत है वो अल्लाह नहीं है, लेकिन सूरत के पास जो भी है वो सूरत के पास है नहीं, सूरत तो मालूम है वो अल्लाह का है। इसलिए सूरत को देख के सुभान अल्लाह बोलते हैं, फिर सूरत के पास जो चीज़ है उसको देख के अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। एक ही वक्त में जो है ना, जहाँ तस्बीह है वहाँ तहमीद है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अल्लाह के कमाल को जाहिर करने के लिए, सुभान अल्लाह जो है ना अल्लाह तबारक व तआला को आयब से बरी करने के लिए, पाक साफ बताने के लिए। और ये दोनों इतने जॉइंट हैं कि सुभान अल्लाह के साथ में व भी हमद ही जुड़ा हुआ है। अलग भी बोलना नहीं है बाज़ वक़्त, सुभान अल्लाह व भी हमद। जैसे कि आप किसी भी शय को देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई कमाल भी है। सूरज के पास सूरज भी है, रोशनी भी है, इतना बड़ा अंडा है, इतना बड़ा काम है उसमें, जाहिर है कि वो मखलूक है। एक मखलूक के पास तो कुछ होता नहीं, तो वो सूरत है तो मखलूक है, मखलूक के पास तो कुछ अपना होता नहीं, तो जो कुछ अब उसके पास है वो खालिक का है। तो एक ही साथ में सुभान अल्लाह होकर दूसरे ही लम्हे में अल्हम्दुलिल्लाह साथ आ जाता है। वो तो हमारी ज़ुबान में तरतीब है, असल में हम एक बोलते वक्त दूसरा नहीं बोल सकते, वरना सुभान अल्लाह बोलते वक्त ही अल्हम्दुलिल्लाह बोलने का है। हमारी ज़ुबान पाबंद है, एक साथ नहीं कलाम कर सकते हम, एक बोले बात दूसरा बोल सकते। अल्लाह के कलाम में वो बात नहीं रहती, अल्लाह का कलाम एक साथ रहता, उनके पास तरतीब हरूफ थोड़ी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद रखना है, ध्यान कायम करना है। जो आदमी सब्र सीख लेता है तो नक़द दम अल्लाह पाक उसको हासिल हो जाते हैं। इन अल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र जो है ये इस्तेआनत के तरीक़ों में से है, मदद लेने के तरीक़ों में से है। दो चीज़ें हम पर ज़रूरी हैं, अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह ताला से इस्तेआनत। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आपकी इबादत करते हैं आपसे मदद लेते हैं। इबादत और इस्तेआनत मरतबा दीन में, दीनी एतबार से दो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला का हक है। अल्लाह के अलावा किसी से इस्तेआनत नहीं ली जाएगी, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। तो इस्तेआनत जो है ना, उसकी शक्लों में से एक अहम तरीन शक्ल सब्र है। इस्तईनु बिस्सब्र, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। दीवार से अल्लाह से मदद लेने का रास्ता है ख़ास सब्र करना, और शुक्र करना अल्लाह ताला से मदद लेने का रास्ता है। नहीं चक्कर तुम लाजी दर, शुक्र करोगे तो हम इजाफा करेंगे नियमतों, मदद लेने में इजाफा चाहता बनना। और दुआ करना भी मदद लेने का रास्ता है, और तौबा करना भी मदद लेने का रास्ता है, और तवक्कुल करना भी मदद लेने का रास्ता है, और अल्लाह तबारक व तआला से सुबूत रखना अपने मामलात को, ये भी अल्लाह से मदद लेने का रास्ता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान से एक दिन पहले जो खुतबा दिया, 29 شعبان کو اس خطبے میں آپ نے اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ ایھا الناس قد اظل لکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، من فطر فیہ صائما کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، وشهر المواسات، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کی روزی بڑھ جاتی ہے، نئی نئی جگہ سے دہی بڑھ جاتے ہیں، زیادہ کھاتا ہے آدمی، افطار میں زیادہ کھاتا ہے دن بھر بھوکا تھا بول کے، سحری میں زیادہ کھاتا ہے دن بھر بھوکا رہنا ہے بول کے، تلافی معافات اور حفظ ما تقدم، غم خاری کا مہینہ ہے، جب آدمی کھانا پینا نہیں کرتا ہے تو اس سے ایک تو یہ کہ نفس بھی مرتا ہے، دل نرم بھی پڑتا ہے، اور دوسرے یہ کہ تکلیف والوں کی تکلیف یاد آتی ہے، تو جو لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، جن کو کھانے پینے کی رہنے سہنے کی تنگی ہوتی ہے، ان تو اختیاری طور پر روزے سے ہیں، جو غیر اختیاری طور پر اس طرح کے حالات میں ہوتے ہوں گے ان پر کیا گزرتی ہوگی، کیسے گزرتی ہوگی، تو آدمی ان کے اندر ہاتھ بٹانا چاہتا ہے تاکہ ان کا غم ہلکا کرے، تو اس لیے رمضان کا مہینہ جو ہے نا وہ غم خاری کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی پوری قدر کرنے والا بنا، ہمارے روزوں کو اللہ پاک قبول فرمائے، ہمارے رمضان کو قبول فرمائے۔